فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتم النبيين والمرسلين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ وعجل فرجہم. تربیت نسل ظہور کے عنوان سے ہونے والی یہ نویں کڑی ہے، اور میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ یہ موضوع کے صرف خطوط ہیں، یہاں پر گائیڈ لائنز ہیں. بہت زیادہ ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے اس میں. آرگنائزرز، ایجوکیٹرز، ٹیچرز، پیرنٹس، سب کا انوالومنٹ کلیکٹیولی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. There shall be a group of people. ایک دو کا کام نہیں ہے، ایک گروپ ہونا چاہیے جن کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو. سچ سوسائٹی کو کریٹ کرنے کے لیے اسلام نے ایک پورا مکمل برنامہ بتایا ہے. ٹوٹل گائیڈ لائنس ہیں، اور یہ گائیڈ لائنس میں کسی طرح کی جھول نہیں ہے. ہر طرح کے ہر موضوع اس میں موجود ہیں. آپ جو بھی ماڈرن سائنسز کو سامنے لائیے، اس سے آگے اسلام ہے. اس کو جو کانفیڈنس ہم نے کھو لیا ہے، اس کو ریگین کرنا ہے قرآن اور اہل بیت کی ٹیچنگس کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر ہم نے ریگین کیا تو انشاءاللہ پھر نئی نسلیں ہماری بہت آسانی سے اس ماحول میں اپنے دین کو بچا سکیں گے، اپنے وجود کو بچا سکیں گے اس ماحول سے، جس ماحول میں دین کو بچانا ایک چیلنجنگ ایشو ہے. جس آیت کی تلاوت کے شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، سورہ اعراف قرآن کا ساتواں سورہ ہے، اس کی 128 آیت ہے. گھر جائیے تو دیکھیے، ریفر کیجئے سیاق و سباق کو، اس کی اگلی آیتیں، پچھلی آیتیں. एक जुमला कहते हुए आगे बढ़ूँ, सबसे ज़्यादा जिस नबी का, जिस रसूल का तस्किरा है वह हज़रत मूसा है। 136 बार हज़रत मूसा का नाम आया है, 136 बार अलैहिस्सलाम। सरकार का नाम लफ्ज़ मीम है, मीम दाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद आली मोहम्मद। क़ुरान में सिर्फ 4 बार आया है, हज़रत मूसा का नाम 136 बार आया है। फिरौन का तस्करा 75 टाइम्स है फिरौन के नाम के साथ। इसमें ख़ुद एक मैसेज है, ये कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगा फिरौनी क़ुव्वतों के साथ और फिर मूसवी क़ुव्वतों के साथ। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया, ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी पावर्स हैं जो इंसान के वजूद में हैं, एक हज़रत मूसा की क़ुव्वत है, एक फिरौन की क़ुव्वत है, एक हुसैनी क़ुव्वत है, एक यजीदी क़ुव्वत है। और ये पैरेलल्स सिर्फ इसी ज़माने में नहीं, इससे पहले भी रहे हैं और बाद में भी रहेंगी। जब भी हक आया है, बातिल उसी शिद्दत से हक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि हक का सलीका ही यही है, अलहक को यालू वला युला अलै, हक खुद ब खुद बुलंद होता है, उसको बुलंद करने की ज़रूरत नहीं होती। मगर अगर हक है तो मैं इन बच्चों को समझाने के लिए कहता हूँ, अगर आपके बैकयार्ड में वहाँ पर घास पर एक पत्थर रख दीजिए, आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पे रखा है नीचे जो है ग्रास ख़त्म हो गई है, लेकिन चंद दिनों के बाद देखते हैं चारों तरफ से बहुत तेज़ी से उससे सख्त ग्रास निकलती है। यानी फितरत ये कह रही है तुम मुझे दबा नहीं सकते, हक को कभी दबाया नहीं जा सकता, हक खुद ब खुद उभरता है, सिर्फ उसको एनलाइटन करने वाले की ज़रूरत है, रोशनी देने वाले की ज़रूरत है, ऐसे माहौल में ले जाने वाले की ज़रूरत है जो अट्रैक्ट कर सके। अगर कर चुके तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से, इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो। मुसलमानों को भी हुक्म दिया गया कि 5 मरतबा अपनी नमाज में सूरह अलहम्द की तिलावत को अपना फ़र्ज़ समझो, मुसलसल ये कहो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इस्तईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो, वस्बेरू, वस्बेरू यानी स्टेडफास्टनेस, पैरों को जमा दो, घबराओ नहीं, परेशान मत हो जाओ। चंद दिन मालूम होता है कि बातिल चाहता है कि तुम्हें हिला दे, लेकिन इससे तुम्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं, ज़र्रा सा सब्र से काम लो, इंशाल्लाह तुम कामयाब है, वल कामयाब हो, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आक़िबत जो है एंड रिज़ल्ट मुत्तकीन के हाथ में है, एंड रिज़ल्ट सालेहीन के हाथ में है। तो अगर हम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का, मोहम्मद व आली اللهم صل على محمد حیدری اگر ہم صحیح انتظار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیلنج ہے دو طرح کی ہماری نسلوں کو تیار کرنا ہے صالحین ہوں متقین ہوں اور اگر یہ اگر جنریشن تیار ہو گئیں تو اس کے معنی ہے کہ زمینہ فراہم ہو گیا امام کے آنے کے لیے کل میں نے اشارہ کیا تھا शायद अल्लाह ने हमें कनाडा को इसलिए भी लाया है कि ज़मीना फराहम रहे, सिर्फ एक ही तरफ हक की आवाज़ ना रहे, हर तरफ जब इमाम आए तो उनके मदद करने वाले मौजूद रहें। अल्लाह करे कि हम में वो सलाहियत पैदा हो, जब अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ कहते हैं तो हकीकत में अज्जलल्लाहु ताला ज़बानी ना रहे बल्कि अमली भी रहे। तो कल मैंने अर्ज़ किया था कि बच्चे की परवरिश में इमाम सादिक अलैहि अफजलु सलात व सलाम ने वअज्जिल फरज, इमाम ने अपने जद की हदीस को और एक्सपेंड किया है। सरकार ने फरमाया अल वलदु सैयदुन सबअ सनीन, अब्दुन सबअ सनीन, वज़ीरुन सबअ सनीन, ये 7 7 7, पहले 7 साल बच्चा जो है सरदार है, वो बिल्कुल किंग है, इसकी बात सुनो, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, मोहब्बत करो, लव करो उससे बे इंतहा, उसको डांट नहीं सकते, उसको जो है सज़ा नहीं दे सकते। 7वें साल के बाद 8वां साल जब आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन पीरियड है, इस पीरियड में ज़रा सा बहुत डेलिकेट हम लोगों को डील करना है, इसलिए कि 8वें साल से 14 साल तक अगर सही रहनुमाई नहीं हुई तो फिर उसका फाउंडेशन हिल जाएगा, फिर एजुकेशन के मसले में प्रॉब्लम होगी और उसके बिहेवियर पैटर्न में भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इस्लाम ने जो पैटर्न दिया है, जो बरनामा दिया है, जो एजेंडा दिया है, वो ये है कि इबादतों में तुम लोग कोशा रहो। एक बात और यहाँ पर बहुत ही अहम है कि उमूमन हम ये देखते हैं जिस बात से हम कहते हैं बच्चों के ना करो तो बच्चे करते हैं। ये बच्चों का ही मसला नहीं है, हम सबका मसला है। हमने भी माँ बाप को ऐसे ही किया, हमारा ही बदला भी जो हमारे बच्चे लेते हैं। तो वो सुबह बच्चा उठता है और उसने तय कर लिया है कि मुझे स्कूल जाना नहीं है, और वो ओढ़े सो रहा है, माँ आती हैं और अभी तक सो रहे हो, डोंट यू लुक द टाइम, कहता अम्मी मुझे मेरे पेट में दर्द है। ये वो दर्द है जो अम्मा को भी हो चुका है, वालिद को भी हो चुका है, ये कांस्टेंट ये स्ट्रगल चल रहा है। उस वक्त क्या करना चाहिए इंसान को? उस वक्त फौरन माँ जो है सीने से लगाए, प्यार करे, आई एम सॉरी टू नो, आप आराम करो, इंशाल्लाह कोई बात नहीं, एक दिन मिस होगा स्कूल तो कोई बात नहीं है। दिन जब चढ़ने लगे, जब बाहर बच्चा बहाल हो जाए, तो उससे बैठ के बात कीजिए, क्या वजह है तुम आज स्कूल नहीं गए, मैं कहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया जो भी आसमानों में है, फसजुदु कुल्लुहुम अजमाईन, ये आदम को मैं जब खाक पे मैं रूह फूंकूँ तो लोग सजदा कर देना, फसजदु कुल्लुहुम, सबों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। देखिए बहुत ही, मैं यही मुसलसल कहता जा रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ हम लोग बहुत से मानों के लिए निकाल सकते हैं अगर हकीकत में कीन इंटरेस्ट रखें दीन में। अल्लाह ने शैतान से सवाल किया, इबलीस से सवाल किया जिसने सजदा नहीं किया था, ये नहीं कह दिया कि तू सजदा नहीं किया निकल जाए यहाँ से फौरन, नो, सवाल किया, मा मनअका अल्ला तस्जुद, सूरह आराफ की आयत है, सूरह आराफ, अजीब गरीब है कि किस चीज़ ने तुझको मना किया सजदे से। तो मालूम हुआ हमको इल्लत तलाश करना चाहिए, प्रस्पेक्टिव अगर ठीक हो जाएगा तो अमल बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो हम लोग अमल पे अटैक कभी ना करें, फिक्र को ठीक कर दें, अमल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिक्र को ठीक करना लंबा प्रोसेस है। सरकार ने 40 साल तक ये कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहु, 40 ईयर्स तक मक्के में कोई और जुमला नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, यू विल बी प्रॉस्पेरियस, बहुत कामयाब हो। अगर कोई मौलवी एक जुमला दूसरी मरतबा अगर दोहरा दे, कहते हैं इसके पास कोई माल मसाला नहीं रहा, वहाँ भी यही मजलिस पड़ा था, यहाँ भी यही मजलिस पड़ा है। 40 साल तक सरकार जो है एक ही जुमला कह रहे हैं कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहु, इसलिए कि तौहीद फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन मजबूत हो गई फिर नबुवत आसान है, इमामत आसान है। इसीलिए इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि पहले तौहीद को दुरुस्त करो। अल्लाह ने पूछा मा मनअका, व्हाट मेड यू, किसने, क्या चीज़ ने तुझे ये सजदे से मना किया? तो देर शुड बी कॉज, सजदा ना करने की कोई ना कोई वजह होना चाहिए। उसने जवाब दिया कि खलकतनी मिन थी, खलकतहु मिन तीन, खलकतनी मिन नार, तूने उसको मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। यानी उसके जहन में यह खन्ना सा आया, फायर इज़ बेटर देन सॉयल, ये मिट्टी से बेहतर आग है। अल्लाह ने कहा फ़ख्र, ये तो इसकी लॉजिक ही ठीक नहीं है। आग में जो डालते हैं भुसम हो जाता है, खाक में जो डालते हैं वो एक के दस बना देता है। जब तुराब में ये असर है तो अबू तुराब में क्या होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد। एक आयत फिर तोहफे के तौर पर मैं मेरे लिए आप तमाम के लिए, सूरह नहल 16वां सूरा है और उसकी 78 आयत। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया। जब अल्लाह ने तुम्हारे माँ के शिकमों से, वोम से बाहर निकाला है, यू हैड नो नॉलेज ऑफ नथिंग, किसी चीज़ का इल्म तुम्हारे पास नहीं था। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया, किसी चीज़ का इल्म नहीं था। वजअला लकुम समअ वल बसरा वल फुआदा लअल्लकुम तशकुरून, तीन जो हैं रिसेप्टर सेल्स दिए, और ये जिसको कुव्वे इदराकिया कहते हैं, कुव्वे इदराकिया जिससे इंसान इल्म हासिल करता है। एक समाअत दी, एक बसारत दी, एक एनालाइजिंग टूल दिया जिसको अक्ल कहते हैं। फुआद दिल को कहते हैं, दिल के माने यहाँ पर अक्ल है। अल्लाह ने तुम्हें आँख दी है, अल्लाह ने तुम्हें कान दिए हैं, और अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दिया है, इंटेलेक्ट। तो ये तीनों के ज़रिए से तुम अल्लाह का क्या करो, लअल्लकुम तशकुरू। दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं बच्चे की परवरिश में। एक बोर्ड होना चाहिए घर में, जहाँ पर डोर पर, जहाँ पर निकलने से पहले या एक फ्रंट डोर से पहले लिविंग रूम में, जिसे वाइट बोर्ड आजकल मिलता है, छोटी छोटी आयतों के टुकड़े, लेकिन पूरे मानों वाले हों। बस दो टुकड़े मिला देंगे, दो लफ्ज़ मिला देंगे तो माने बल जाएंगे। जैसे इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अब कह दी कि ये आयत ऑफ द वीक, इस वीक की आयत है। बच्चा जब भी, चूंकि आंखों से देख रहा है, और जब आप भी जाइए तो जाते जाते पढ़ते चले जाइए, वो भी बच्चा भी पढ़ता जाएगा। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के दीन, अल्लाह के पास क्या है, उसका दीन इस्लाम है। खूबसूरत है इस्लाम का सरीका। इस्लाम ये नहीं कहता कि दूसरा दीन ख़राब है। देखिए बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह कभी किसी के दीन को ख़राब नहीं कहता। लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। किसी को बुरा कहने का भी हक़ नहीं है, ये भी सुन लीजिए अच्छी तरह से। हमारे पास क़ुरान की आयत है, सूरह अनआम छठवां सूरा है, 122 या 108, सूरह अनआम यकीनी है, दोनों में से देख लीजिए आयत है। वला तसुब्बुल्लदीन यदउना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्मिन कذلك زينا لكل أمة عملهم। अजीब गरीब है समंदर। नेवर नेवर डिग्रेड एनी रिलीजन। वला तसुब्बुल्लदीन यदउना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह से हटकर किसी और को पुकारते हैं, जैसे हिंदू हैं भगवान कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कुछ और कहती है, जुडाइज़म कुछ और कहती है, उसी तरह हर मज़हब, हर इंसान उसका एक मज़हब है। मिंदुल निल्ला जो लोग हैं उनको तुम बुरा नहीं कह सकते। अब देखिए, आप लॉजिक देखिए कुरान की। क्या पॉपुलेशन है ह्यूमन काइंड की, इंसान की, इंसानों की आबादी कितनी है, 7 बिलियन प्लस। कितने मुसलमान हैं, नियरली 1.8 बिलियन, एंड एवरी फिफ्थ वन इज़ मुस्लिम। मेजॉरिटी किसकी है, तवज्जो, मेजॉरिटी किसकी है, नॉन मुस्लिम्स की है। आप माइनॉरिटी में हैं दुनिया में, आप माइनॉरिटी छाना चाहती है मेजॉरिटी पे, क्या सलीका होना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन मैंने एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन को जहन में लाया, चाहता था मार्केट में लाऊं, बिजनेस का। मैं बिजनेस भी कर चुका हूँ इसी टोरंटो में। बिजनेस आप भी कर सकते हैं, बिजनेस बेहतरीन ज़माना है, बेहतरीन हालात है, खुशन यहाँ पर अब बहुत ज़मीन फराहम है, हम लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। बहरहाल बिज़नेस में मैंने एक प्रोडक्ट तैयार किया, और उसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है। अगर मैं बमबारी करूँगा दूसरे प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट ख़राब है मेरा अच्छा है, तो कभी चलने वाला नहीं है। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, क्या करना चाहिए, इस प्रोडक्ट की खसूसियत क्या है जो उसमें नहीं है। तवज्जो, इसकी खसूसियत। इसी तरह से अहले बैत के फजाइल बयान करो, दूसरे के चेहरे खुद ब खुद मालूम हो जाएंगे। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा एक बरादरान अहले सुन्नत की एक बहन इसी टोरंटो में मुझे फ़ोन करती है, मौलाना मैं आपसे कम्युनिकेट करती रहती हूँ, अब मैं बहुत ज़्यादा अहले बैत से मेरा इश्क, अब जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी मेजॉरिटी जो है अपने आप को मौलाई कहते हैं, अभी जो हाल में जो फिसाद होते होते बचा है, जो जुलूस का मसला हुआ, जिसमें एक ही चीज़ जो सामने आई, यजीद की जो जिंदाबाद की नारे लगाए गए, दूसरे दिन 99% सुन्नियों ने साथ दिया शियों का। इसलिए साथ दिया कि सबों ने कहा कि हम यजीद को मानते नहीं हैं, ये बीच में कोई कौम है जो भटका रही है। तो ये चेहरा जो उभार रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं, किसी को बुरा कहने से नहीं है, आपके अहले बैत अलैहिम अफजलुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को उभार दीजिए, खुद ब खुद दूसरों के चेहरे समझ में आते चले जाएंगे। कुरान ही कह रहा है यू डोंट हैव एनी राइट, किसी को नहीं। वो बहन ने मुझे फ़ोन किया, मौलाना एक मजलिस में गई थी, बड़ी अकीदत से इमाम हुसैन पर गिरिया करने, अहले बैत की फजाइल को सुनने के लिए, वहाँ पर हमारे खलफा का नाम ले ले करके गालियाँ दी गई, इसी टोरंटो में, इसी अशरे में। कहाँ हैं हम लोग? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिनको कलमा नहीं आता वो मजलिसें पढ़ने लगेंगे तो यह हशर होगा, जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता वो मजलिसें पढ़ेंगे तो यह हशर होगा, जो तालीम असल जगह से नहीं लेंगे तो यह हशर होगा। मैंने इसलिए बताया था कि यहां पर अमेरिका, कैनेडा में, वेस्टर्न कंट्री में अगर आप डॉक्टर हैं, पाकिस्तान में डॉक्टर हैं, हिंदुस्तान में डॉक्टर हैं, यहां आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक कि यहाँ इक्विवेलेंट आप इम्तिहान ना दे दें। अगर आप में दम है तो जाइए कुम पढ़िए, चंद साल पढ़ के आइए, फिर इसके बाद पढ़ने लगिए तो पता चलेगा। जाहिल बकता रहता है, इल्म कभी बोलता नहीं है। दीन इस्लाम ने इस तरह की कोई इजाज़त किसी को नहीं दी है कि किसी भी मजहब को तुम डिग्रेड करो, और तुम्हारे मजहब को बढ़ाने का वाहिद तरीका यह है तुम्हारे फजाइल को बयान करो, तुम्हारे उलूम को बयान करो, खुद ब खुद दूसरे चेहरे जाहिर होते चले जाएंगे। खुदा के लिए मैं गुजारिश करता हूँ, अगर कोई मोमिना, कोई मोमिनीन ऐसी औरतों को प्रमोट कर रहे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। रोज़ क़यामत हो जाएगी, दरबार है परवरदिगार में गिला करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ नाम तबर्रा झूठा लेकर के झूठे सलीके से तबर्रा करना दीन ने कहीं सिखाया नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मौलाना दलील दीजिए, दलील यही आया, सूरह अनआम की आयत है, वला तसुब्बुल्लदीना यदउना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह से हटकर कोई और को पुकारने वालों को तुम बुरा कह नहीं सकते, अल्लाह की मुकाबले में किसी और को कह रहे हैं। क्यों? अगर कहोगे तो उनको अभी राइट है, फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, कि तुम्हारी जहालत की बिना पर वो अल्लाह को खराब कहेंगे। तो ये तुम्हारी जहालत है, तुम्हारी जहालत की बिना पर अल्लाह को वो बिगाड़ देंगे। उसके बाद अजीब व गरीब आयत का इख्तिताम है, कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल उम्मतिन अमलहुम। सिनेगॉग में जाके यहूदी अपने आप में पीस महसूस करता है, क्रिश्चियन जाता है चर्च में वो महसूस करता है कि देर इज ए पीस, हिंदू जाता है टेंपल में, वहां जाकर के कुरान कह रहा है कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल उम्मतिन अमलहुम, हर एक उम्मत को उसका अमल पसंद आता है, उसको जीनत देता है। वो खुदा जानता है कि उसका अमल क्या है क्या नहीं है। तुम्हें ये हक नहीं दिया गया है कि बुरा कहो, अगर फैलाना चाहते हो इस्लाम की खसूसियतें बयान करो, खुद ब खुद बातचीत। मैं इन नौजवानों को समझाने की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो ये है कि हर साल जो स्टैटिस्टिक हैं अमेरिका में 20,000 मुसलमान हो रहे हैं, कितने 20,000, कौन से मुसलमान हो रहे हैं, जो मार्केट में काम कर रहे हैं। तवज्जो, जो मार्केट में जाकर के दावत देता है, सेल्समैन बना हुआ इस्लाम का, जो भी अपनी आइडियालॉजी को लेकर जाया वो बुला रहा है। हम लोग चार दीवारों में बैठे हुए हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, हम लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं, इब्लाग हमारे पास है ही नहीं है, तबलीग हमारे पास है ही नहीं है, हम लोग एक पॉम्फलेट नहीं देते। इमाम हुसैन जैसी कुर्बानी, जो क़ियामत की कुर्बानी है, एक कुर्बानी का एक पॉम्फलेट अगर सही पहुँचे, मुमकिन है कि मेरा पड़ोसी बेदार हो जाए। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है, इसलिए कि वी आर इन कॉम्प्लेक्स। ये जब तक कॉम्प्लेक्सिटी बाहर ख़त्म नहीं होगी, हमारा दीन हमारे साथ होने वाला नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सलवात मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمد و آلی محمد و عجل فرج. سمجھنے کی کوشش کیجئے. سماعت و بصارت, ہیئرنگ ٹول اور سیئنگ, یہ دو چیزیں بہت ہی پاورفل ادراکی قوتیں, ادراک یعنی ریسپٹر سیلس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. تو بچے کے بچپنے سے اگر ماں مسلسل اذان سن رہی ہے تو بچہ اذان سنے گا ماں کے شکم سے ہی. نماز کا وقت رہا, اللہ اکبر, سب کچھ بند ہوا, فوراً مسلح پر. پہلے 7 ایئرس تک بچوں کو کبھی زور مت دیجئے کہ تم نماز پڑھو, صرف آپ کھڑے ہو جائیے. دیکھیے چند دنوں کے بعد بچہ خود آئے گا, کبھی تسبیح سے کھیل رہا ہے, کبھی سجدگاہ سے کھیل رہا ہے, جس گھر میں جو چیز ہوتی ہے اس سے کھیلتا ہے. فاطمہ زہرا نے کیا بلند کر دیا, اس نے شہادتوں سے کھلوا کے بتا دیا کہ یہ بچے کون سے مقام پہ پہنچے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ. یا میں ایک جملہ اور کہوں, اللہم صلی علی محمد. انسان ترقی کرنا چاہتا ہے, اپنی ابیلٹی کو دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے, جانا جہاں چاہ, ہم آ گئے کینیڈا, کوئی گئے آسٹریلیا, کوئی نیوزی لینڈ, کوئی نکل رہا ہے. میں نے کراچی میں مجلس میں پڑھی تھی, میں پڑھا تھا یہ بات کو کہ ہماری تعلیم کا معراج یہ ہے کہ گریجویشن کے ساتھ ہی اگر ویسٹ کا ویزا مل گیا تو معراج ہو گئی. یہ ہماری حالت ہے. اس کی وجہ ہے جو اللہ نے ہم کو ریزورسز دیے ہیں ہم نے مینیج نہیں کیا. جب مینیج نہیں کیا تو دوسرے مینیج کریں گے, دوسرے مینیج کر رہے ہیں ہمارے پورے ریسورسز کو. ایک بہت بڑی کہانی ہے جو اس کو اس موضوع میں چھیڑ نہیں سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم خود ریوائیو کریں. اللہ نے جو لایا ہے کوئی نہ کوئی حکمت سے لایا ہے, یہ جو حکمت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں تو کہا کرتا ہوں, میں حج میں جب جایا کرتے تھے تو من یہ کاندھو لمبا لباس عربی چہرہ بھی من وین آنتا, وہ ٹیکسی ڈرائیور پوچھتے تھے کہ من وین آنتا, کہاں سے تم ہو. میں کہا تھا انا اصلی الحجازی, میں سعودی کو کبھی سعودی نہیں کہتا, حجاز کہتا ہوں, اس لیے کہ حجاز ہی نام ہے, سعودی خود بدعت ہے. 3000 کی ایک فیملی پورے مسلمان کو ہائی جیک کیے ہوئے ہے. بہرحال ایک الگ بات ہے, اصل ہمارا حجاز اسی مدینہ کا ہوں. میں ہمارے آبا و اجداد یہاں پہ ظلم ہونے کی وجہ سے ایران گئے, ایران میں ظلم ہوا تو پھر انڈیا چلے گئے. ہم جو ہیں کچھ حالات ایسے ہوئے, ہم کینیڈا میں ہیں, ہماری اولاد کہاں جانے والی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. دیکھیے یہ پریشرائز جو ہو رہا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے کہ یہ دین جو ہے پھیلا. چھٹے امام سفر میں جا رہے ہیں, ایک مرتبہ ایک مقام پہ رکے, پوچھے مجھے دیہات کون سا معلوم کرو, کون کون ہیں آپ. معلوم کیا تو مولا یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں. جی مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی, پروردگارا ان کو خیر خیریت, ان کو مال دولت عنایت فرما, ان کو منتشر کر دے. جی ہو گئی بات. پھر آگے بڑھے, پھر آگے بڑھے, ایک دیہات معلوم کرو کون ہے یہاں پر. کہا مولا جتنے بھی ہیں کوئی چاہنے والا آپ کا نہیں ہے. مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی, پروردگارا جتنے ان کو آباد رکھ, ان کو یہیں پر رکھ, ان کو پھیلا نہیں. کسی نے سننے والے نے کہا یہ کیا ہوئی بات, اپنے مومنین کو آپ نے بد دعا دے دی اور اپنے مومنین کے لیے آپ نے یہ کہا کہ منتشر ہو جائیں, غیروں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہیں رہیں. مولا نے کہا حق کو منتشر ہونا ہی چاہیے اور باطل کو کنٹین رہنا ہی چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعلی محمد وعجل فرج. تو ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ جو سماعت و بصارت کا مسئلہ ہے کوآرڈینیشن ہو. جیسے حدیث میں ہے کہ 7 سال میں بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو پنش کرو. تشویق توبیق, دو لفظیں اچھی طرح سے یاد سیکھ کر کی جائیے. آج جو ہے تشویق کے معنی بچوں کو شوق دلانا, کوئی نہ کوئی گفٹ. کس میں نے بتایا تھا 3-4 مجلس میں, جسے اسٹار دے دیا, کوئی نہ کوئی ایک چیز دے دی کہ بچہ اس سے تشویق حاصل کرے. دوسرا ہے توبیق. توبیق کے معنی ٹو اسٹریٹن اپ, جس کو کہتے ہیں انگلش میں. یہاں پر توبیق کے معنی مارنا نہیں ہے, پریویلیجز کو دینا تشویق ہے, پریویلیجز کا لے لینا توبیق ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھے, بہت آسان ہے. یعنی ضرورت نہیں ہے کہ تھپڑ بازی ہو, ضرورت نہیں کہ ڈانٹیں, بلکہ تشویق ایسی ہو کہ جو پریویلیجز موجود ہیں اس کو دو. مثلا بچہ جو ہے माँ बाप ने एक टाइम मुकर्रर किया है 30 मिनट्स तुम फलां प्रोग्राम जो है कब जो है जैसे देख सकते हो टीवी, मसलन आजकल के कोई कार्टून्स हैं बच्चों को पसंद है, कार्टून्स में आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप दे सकते हैं ये कार्टून तुम देख सकते हो 30 मिनट्स। ये क्या तशवीक है। और बच्चे ने अगर कोई मिस्टेक किया उस 30 मिनट्स में 10 मिनट्स चूंकि यू हैव डन दिस, ये जो है मच मोर इफेक्टिव दैन एक तमाचा है। तमाचा कोई हल नहीं है बल्कि लॉजिकल अप्रोच हल है। अगर माँ बाप डांटेंगे तो बच्चा डांट सीखेगा, माँ बाप गुफ्तगू करना सीखेंगे बच्चा गुफ्तगू करना सीखेगा, लॉजिक से मसले को हल करना सीखेगा। जिस तरह से माँ बाप ट्रीट करेंगे बच्चा उसी तरह से बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे वही हैं एज दे लीव, जिस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं वैसे ही वो कॉपी फोटो कापियाँ हैं, जैसे आप बना दें वो बनते चले जाएंगे, वो सफ़ेद पेपर हैं जैसे लिखते चले जाएं लिखें। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चों की इस बारीक बीनी पे काम करें। देखिए बहुत अच्छी तरह से एक किस्सा है, एक किताब है इस तरबियत के हवाले से, उसको मैं अपने अल्फाज में अदा करना चाहता हूँ। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद आली। और ये भी हमारी जिंदगियों के साथ हो गया है। 40 साल एक शख्स अपने दोस्त से जिक्र कर रहा है कि मैं मस्जिद में जाना नहीं चाहता, 40 ईयर्स का हो गया। क्यों भाई? का मेरा बचपना था मस्जिद में गया था तो एक ऐसी डांट पिलाई गई मुझे कि तब से मुझे मस्जिद में जाना नफरत। अगर खुदा ना खासा यहाँ पर आए हुए हैं बच्चे माशाल्लाह पर यहाँ बैठे हुए हैं, इनका प्रस्पेक्टिव लेवल अलग है, ये घंटे तक बैठना इनका हमको सुनना ये बोरिंग है उनके लिए, आसान मसला नहीं है। तो बच्चे कभी कुछ करने लगते हैं तो इससे बाहर का अगर कोई बाप मिल निकल करके कोई थप्पड़ मार दे तो कभी मजलिस में मोहब्बत करने वाला वो नहीं है। इनकी एज को इनकी एज के एतबार से डील करना चाहिए। दूसरा वाक़या है कि मैं एक आलिम से इतनी मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद हर आलिम से मोहब्बत करता हूँ। क्यों? क्या मेरा बचपना था? ये 40 ईयर्स ओल्ड जो हैं डिस्कस कर रहे हैं अपने बच्चों के बचपने के किस्से। हम लोग जाते थे मजलिसों में, है इसमें ईरान में हयात कहते हैं, हयात जैसे इमाम बारगाह को वो लोग हयात कर हुसैनिया जिसको कहते, हम हयातों में जाते थे। हमारे पड़ोस में एक आलिम जो है उनके पास मजलिस इसी तरह से मौलाना क़िबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिम तमाम उलमा और हुसन बानी है ये एम्स सलामत रखिए मौलाना अहमद रज़ा हुसैनी साहब क़िबला को, आप लोग सब मोमिनीन उलमा की सलामती के लिए एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। मजलिस ख़त्म हुई तो हम लोगों ने गेंद खेलना शुरू किया गेंद से, और वहाँ पर उस ज़माने में कंदीलें लगी होती थीं, और हुआ ये कि हमने जो खेलना शुरू किया तो हमारा हाथ या एक ही गेंद जो है उस कंदील पे गिरा, टूटा और फूटा। वो आलिम हमारे सामने आया, हमको सीने से लगाया और अंदर ले गए, हमें खाने का हुक्म दिया कि अगर तुम भूख लगी है तुम्हें तो तुम लोगों को चाहिए कि हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। ये जो बिहेवियरल पैटर्न है कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर तक नहीं भुला सका, जब भी इमाम बारगाह जाता हूँ मुझे याद आता है और मैं हमेशा इससे मोहब्बत करता हूँ। ये कह रहा है कि मस्जिद में जाना नहीं चाहता, ये कह रहा है कि मुझे इमाम बारगाह क्यों, दो जगह दो बिहेवियर मिले हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन है मेरे साथ। अब आइए, सीरिया कौन किस मकाम का नाम है मौलाली की हुकूमत के ज़माने में, जहाँ पर अहले बैत के फजाइल का ब्लॉकेज था, इतना ब्लॉकेज था कि किसी को पता नहीं था कि रिवायतें हैं तारीख हिस्ट्री कहती है कि एक दिन बाजार दमिश्क में लोग बहस कर रहे थे फातिमा जहरा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह के रिश्ते भी मालूम नहीं थे, मौला अली के दुश्मन थे। तो उस जगह से एक शख्स आया हुआ है मदीने में, मुलाकात हुई, उसे पता भी नहीं कौन है, मुलाकात हुई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, मौला से सलाम अलैकुम, वालेकुम, मन अंता हु आर यू, इमाम हसन ने कहा अना हसन बिन अली, मैं हसन हूँ मेरा नाम है, मेरे वालिद अली हैं, वो वहाँ से जो बॉक्स का पूरा मार्केट लाया था वो पूरी थैली जो शुरू किया गालियाँ बकना। इमाम सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। जब उसकी पूरी खाली हो गई उसकी पूरी गठड़ी, इमाम ने कहा कि मुझे यकीन है कि तुम मदीने वाले नहीं हो जी, यू आर ए स्ट्रेंजर, मुझे मालूम है कि तुम स्ट्रेंजर हो, चलो मेरे घर चलें, मैं तुम्हारे लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम करता हूँ, और लिबास नहीं है तो लिबास का इंतज़ाम करता हूँ, और तुम जहाँ से भी आए हो सवारी नहीं है सवारी का भी इंतज़ाम करता हूँ। यानी आज अगर आज की ज़बान में दे दें कि लेक्सिस हाथ में दे दूँ उस घोड़े के माने, वो ज़माने में आसान मसला नहीं है, तुमको सवारी दे दूँ, वो परेशान हो जाता है। मैंने पूरी इतनी बुग़्ज़ व इनाद करने के बाद ये मेरा रिएक्शन के बजाय, मुझ पर थप्पड़ मारने के बजाय ये शख्स का यही है दीन, कदमों पे गिरता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तारीख में है कि वो इमाम हसन का इतना करीब हुआ कि इमाम हसन के साथ जंग में शरीक होकर के शहीद हुआ। सिर्फ कैरेक्टर को बदलना हो तो जिसको आजकल की दुनिया में रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, ये रिवर्स साइकोलॉजी नहीं है, दीन की तालीमात ही यही हैं कि बुरे को अच्छे से बदलो। अगर किसी बुरे को बुरा, अगर इस्लाम ने ये नहीं कहा कि बुरे से दुश्मनी करो नफरत करो, अगर बुरों से दुश्मनी करने लगेंगे तो फिर कोई मिलने वाला ही नहीं, अच्छा हम सब बुरे हैं तो क्या करो, बुरे की बुराई से दुश्मनी करो, अच्छाइयों को इंस्टिल करो। अगर अच्छाई को इंस्टिल करना है तो लॉन्ग प्रोसेस है, मगर ये प्रोसेस इतना कवी है कि कभी वो बच्चा भुला नहीं सकता। बच्चों की परवरिश में भी बहुत अहम ये नुक्ता है कि बच्चे जब कभी वो मस्ती करें शैतानत करें तो उसका रिएक्शन हमारा गुस्सा नहीं होना चाहिए, मोहब्बत लव होना चाहिए जितना हो सके। इसीलिए ये दुआ बहुत अच्छी है, रब्बी शराहली सदरी व यस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। नमाज की एक दुआओं में जैसे मैंने एक दुआ बताई थी, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, उसके साथ एक दुआ में ये दुआ रख लीजिए रोज़ाना, रब्बी शराहली सदरी। हमारा आसान मसला नहीं, ये मासूम बच्चे हैं, हमें तरबियत मालूम नहीं है, परवरदिगार हमारी ज़बान के गिराह को खोल दें और हमें इतनी तौफीक दे कि जो बात हम कह रहे हैं बच्चे समझ सकें। सलावात पढ़िए इमाम द्वारे में। محمد وعجل فرجهم الولد سيد سبع سنين عبد سبع سنين وزير سبع سنين سرکار کی حدیث بچہ 7 years 7 years 7 first 7 years love محبت kindness master ہے सेकेंड 7 ईयर्स स्लेव हैं, बिल्कुल उसको टाइट रखो, उसको गाइडेंस का ज़माना है, वो तैयार भी हो जाएगा, इसलिए कि 7 साल उसने मोहब्बत देखी है, अब माँ बाप की बात सुनने को तैयार भी हो जाएगा, वो गाइडेंस को ले भीगा। 14 साल के बाद अब वो बात नहीं रहेगी, ना ही स्लेवरी है ना ही वो मास्टरशिप है, अब उसके हार्मोन्स बड़े हो गए, अब तो लाइसेंस भी मिल रहा है उसे, ज़रा सा उसको डील करने का सलीका। और वज़ीर उन सब आसनी, अब बच्चे को जो है वज़ीर बना लो, वज़ीर यानी एडवाइज़र बना दो। इसी टोरंटो में कई वाक़यात हमारी ज़िंदगी के साथ हुए हैं, तकरीबन 42 साल मोमिनीन से बातें ये ज़िंदगी के साथ होती रहती हैं। एक बहन ने 20 इयर्स पहले की बात है, फ़ोन किया, मौलाना मेरा बच्चा ज़रा सा हाथ में संभलता नहीं है, मैं परेशान हूँ बहुत, 16 साल का है, उसने लाइसेंस ले लिया है और हमारी बात सुनता है, उसके ग्रेड गिरते चले जा रहे हैं, प्लीज़ गिव मी सोल्यूशंस। मैंने कहा कि पहला काम ये करो कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ है 25वीं, हफ्ते में एक मरतबा उसको तर्जुमे के साथ पढ़ा करो, ज़रा दिल ज़रा सा बहुत गौर से उसके तालीमात पर तुम अल्लाह से भीख मांगो, तुम अमल करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। उसने कहा मौलाना क्या है? मैंने पूछा कि तुम्हारे घर का वीकली जो ख़र्चा है ग्रोसरी का तुमको मालूम है? इस बच्चे से कहो घर का पूरा मैनेजमेंट इन रिगार्ड्स टू ख़रीदो फ़रोख तुम्हारे हाथ। मौलाना वो तो बिगड़ जाएगा, अब घबराइए नहीं, तब दो चंद देखेंगे क्या होगा, एक महीना मेरी बात तो सुनो उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब वो बच्चे को दे दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो बच्चा जो है कभी कूपन तलाश कर रहा है कि पाँच दो डॉलर कहाँ बचेंगे, तीन डॉलर कहाँ बचेंगे, पाँच डॉलर कहाँ बचेंगे। और एक महीने दो महीने के बाद माँ ने फ़ोन किया, मौलाना क्या मुजर्रब तावीज़ दिया आपने। मैंने कहा ना ये तावीज़ नहीं है, हिकमत दीन है। दीन ये नहीं कहता कि एनर्जीज़ को दबाया जाए, दीन ये कहता है एनर्जीज़ को डायरेक्ट किया जाए। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वअज्जिल फरज। सोल्यूशन ये सब के लिए एक नहीं है, हर एक बच्चे के केसेस अलग हैं, हर एक बच्चे के प्रस्पेक्टिव लेवल्स अलग हैं, हर एक के लिए अलग अलग दवाएं हैं, एक ही गोली सब जगह चलने वाली नहीं है। तो हिकमत इसमें माँ बाप में होना चाहिए। हम लोगों का मसला यह है, हम लोग शादी कर लेते हैं, शादी के अहकाम मालूम नहीं है, और हमारे पास बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की परवरिश के अहकाम नहीं है। इसीलिए प्री मैरिज सेमिनार्स, खुसन जो जवान बच्चे भी इस साल शादी होने वाले हैं, लड़कियाँ मेरी बहनें जो ऑनलाइन सुनने वाले हैं, हमारी ऑनलाइन में मौजूद हैं, सारी दुनिया मैंने इंट्रोड्यूस किया, 1985 से मुसलसल इस बात पे काम कर रहा हूँ। अब पोस्ट मैरिज सेमिनार्स, प्री मैरिज सेमिनार्स, पोस्ट मैरिज सेमिनार्स हम सब के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं मालूम क्या ज़िंदगी कैसे गुजारना है, दीनी ज़िंदगी कैसे गुजारना है, मैं नहीं मालूम है। अगर ये कानून, अरे फारसी में कहते हैं कानून, ये जो कानून, ये हमारा पूरा घर जो है एक फैक्ट्री है। मिसाल देता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। मसलन एक कार बनाने वाली फैक्ट्री में होता क्या है, रोबोट्स होते हैं जो मैकेनिकल रोबोट हैं, और उसके बाद मटेरियल तैयार हैं, असेंबली लाइन होती है, हर एक रोबोट को प्रोग्राम कर दिया गया है उसको क्या करना है, रोबोट उतना ही करता जो उसको बताया गया। फ्रेम लग गया, शुरू होता है एक फ्रेम से, होते 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 बाहर निकलते हुए पूरी कार बनके निकलती है। इंसान भी एक ऐसी फैक्ट्री की तलाश में है जिसमें वो पैदा हो जरूर इंसान की सूरत में, जब निकले आहिस्ता आहिस्ता तो वो फिर मुसलमान बन के निकले, या ये कि मुसलमान दाखिल हो तो सलमान बन के निकले। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। अब आइए कुरान में दो टीनेजर्स का तस्करा करूँगा मैं, उसके बाद फिर आज की मंजिल पे आएंगे हम। दो कॉन्ट्रडिक्टरी यानी टीनेजर्स हैं, एक हजरत लुकमान के फर्जन हैं, और ज़ाहरन जो लुकमान से कम्युनिकेशन है बच्चे का, अपने जवान टीनेजर का, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है बाप और बेटे का। और एक नबी मुरसल और उलुल अज़्म का बेटा है, दो कॉन्ट्रेन मुतज़ाद सूरतें कुरान पेश करता है, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। हज़रत लुकमान नबी नहीं थे, कुरान ने हकीम कहा, ए वाइज पर्सन हकीम, मगर उनके नाम का सूरा मौजूद है, तो इसके माने क्या हुए। मिसाल दे रहा अल्लाह, जिसमें जो एबिलिटी है उसको रिकग्नाइज करो। आय है जी, अगर आपकी कम्युनिटी में किसी में एबिलिटी मौजूद है, रिकग्नाइज दैट एबिलिटी। अगर हो सके तो हमारे पास गदीर में हम लोग जो हैं नौजवान बच्चों को जो उन्होंने इस साल जो अचीवमेंट किया है उनको अवार्ड दें। अवार्ड ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा, एक छोटी सी जो भी बुला करके खड़ा करके भी इन्होंने अपने क्लास में फर्स्ट हुआ है, सलवात पढ़ने देना भी एक बहुत बड़ी उसके लिए हिम्मत अफजाई है, हमें ये करना चाहिए। हज़रत लुकमान बेटे से पहला दर्स जो देते हैं सूरह लुकमान 31वां सूरह 31st चैप्टर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ क़ाल लुकमानु लिबने वहुवा यअदु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। बेटे हज़रत मूसा जो है हज़रत लुकमान एडमोनेशन दे रहे हैं, वह हुआ यादो वाज और नसीहत कर रहे हैं, एडमोनेशन दे रहे हैं। क्या एडमोनेशन है, वाज और नसीहत है, या बुनैया, ये या बुनैया जो है लविंग रिलेशनशिप है, ओ माय सन, बहुत ओ माय डियर, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, शिर्क मत करो, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म क्या है, शिर्क। शिर्क हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि अल्लाह के मुकाबले में किसी चीज़ को ला देने का नाम शिर्क है, ना, शिर्क इंडिपेंडेंस का नाम है। अगर इंसान चाहता है फ्री हो जाए तो शिर्क ना करे, چنانچہ مولا نے اسی لیٹر میں جو امام حسن کو علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا ہے اس میں لکھا ہے لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، کسی دوسرے کا غلام نہ بن، اللہ نے تجھے حر بنایا. یعنی فریڈم اگر انسان سیکھنا چاہتا ہے وہ توحید کے ذریعے سے، یعنی ناٹ ٹو ریلے اپن نو ون، حتیٰ پیرنٹس نہیں، صرف اللہ کے لیے. یہ اگر انسان میں، بچے میں ایبلٹی آ جائے کہ وہ پیروں پہ کھڑا ہو، انا صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت انا من المسلمین، یہ توحید کی خصوصیت ہے، اسے زیادہ نہیں بول سکتا. اس کے بعد حضرت لقمان کا یہ بہت اہم میسیج ہے، آج دو چار منٹ ادھر ادھر ہو جائیں گے، پریشانی کی بات نہیں ہے، میرے ساتھ رہیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. انشاءاللہ کل بھی اس کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلیں گے. حضرت نوح کشتی میں ہیں اور اعلان کر چکے ہیں جو کشتی میں آئے گا وہی بچے گا، اور 950 سال تبلیغ کی ہے، 950 ایئرس، اور ایک مرتبہ پانی ابلنے لگا، اوپر سے پانی آنے لگا، ایک قیامت، بارش، پانی پانی پانی، ہر طرف پانی سوائے کشتی کے کوئی اور چیز بچنے والی نہیں. حضرت نوح نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا، خود ان کا ہی بیٹا ہے، اپنا ہی خون ہے، وہ فی معزلین، اور موجوں میں گھرا ہوا، یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے ہذا جبل یعصمنی، یہ پہاڑی ہے جو مجھے بچا لے گی. ارے پہاڑی تو بڑے بڑوں کو ڈوبا دی، کسی کو بچائے نہیں، تو پہاڑی کسی کو کہاں بچائے گی، یہ پہاڑی ہے. اشارہ کر رہا قرآن کہ کبھی کبھی بچے جو کہتے ہیں میرا دوست مجھے بچا لے گا، میرا فرینڈ مجھے بچا لے گا، فلاں وہ بچا لے گا، ماں باپ کی پوری محنت کو بھول جاتا ہے. 16 سال 17 سال کا ہوتا ہے، باپ کو کہتا ہے کہ میرا فرینڈ بچا لے گا، جب چند دنوں کے لیے فرینڈ کے پاس جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو یہاں پر بھی آج کی کنٹریز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ بچا لے گا، ہمیں رشیا بچا لے گا. ارے بھائی کوئی کسی کو بچاتا نہیں ہے، بچاتا ہے تو اللہ ہے. جو علی کہتے ہیں کسی کے پاس نہیں جاتے، جو اللہ کہتے ہیں وہ ہر ایک کے پاس جاتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک فضیلت کا رخ، فضیلت کا رخ بھی آ گیا ہے، بہت اچھی طرح سے سنیے. بیٹا ڈوب رہا تھا اور باپ کا دل کباب ہو رہا ہے. ہذا ابنی و اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا ہے اور میرا اہل ہے، میرا اہل ہے. اللہ کی آواز آئی لیس من اہلک، بیٹا ضرور ہے، اہل نہیں ہے، اہل ہوتا تو کشتی میں آ جاتا. تو یہاں پر اہل بیت کا ترجمہ بھی معلوم ہو گیا، اہل بیت وہی ہوتے ہیں جو باپ کے قدموں پر قدم رکھتے ہیں، جو ہاں سے ہٹ جائے وہ اہل بیت میں ہو. صلوات پڑھیے محمد. لو اینڈ افیکشن بچوں کے ساتھ، حضرت عباس کی ولادت کے بعد جو روایتوں میں ہیں کہ مولا امیر المومنین نے جو پہلا کام کیا گود میں لینے کے بعد، بچے کے کپڑے کو ہٹا کر کے بازوؤں کو بوسا دینا شروع کیا. اور تاریخ نے قمر بنی ہاشم کہا ہے، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند. شوق اظہار مودت میں نیا موڑ دیا، مدح کی راہ میں ایک اپنا نشاں چھوڑ دیا. تھا ارادہ کہ بعنوان وفا کچھ لکھوں، میں نے عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. روایتوں میں کہ حضرت عباس ابھی 16 سال کے تھے، اتنے اونچے پورے ہو چکے تھے کہ لوگ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے تھے. جلال ابا الفضل العباس کا یہ عالم تھا. और जंगे सिफीन में कोई फर्क नहीं कर सक रहा था, अली लड़ रहे हैं या अब्बास लड़ रहे हैं। अब्बास ने चराग वफा के जला दिए, मुँह से नहीं अमल से सबूत वफा दिए। अब्बास ने चराग वफा के जला दिए, मुँह से नहीं अमल से सबूत वफा दिए। हद है के मश्क भरने में जो हो गए थे तर, अब्बास ने उन हाथों को अपने कटा लिए। अब्बास के साथ वफा के लफ्ज़ क्यों हैं, वो एक ख़ुद एक मौजू है। क्यों अब्बास से बावफा? नौजवान बच्चे अच्छी तरह से सुने और समझने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा अमल की तरफ। आस्क यू टू एक्ट अपॉन इट। शब आशूर है, हज़रत अब्बास तलवार पर साइकिल कर रहे हैं, यानी शार्पनिंग द स्वॉर्ड जिसको होते हैं, साइकिल के माने गेटिंग रेडी फॉर टुमारो। उस ज़माने में मशाल जो रहती थी, चराग जल रहा है, और अब्बास के जहन में कल इजाज़त मिल जाए दुनिया को बता दूंगा मैं किसका बेटा हूँ। चंद नाम ऐसे हैं जो अकेले समझ में नहीं आते जब तक कि दूसरा नाम ना ले। याकूब के साथ यूसुफ़ का नाम ज़रूर लीजिए, फ़ातिमा के रसूलुल्लाह के साथ फ़ातिमा का नाम ज़रूर लीजिए, हुसैन के साथ ज़ैनब का नाम ज़रूर लीजिए, और अब्बास के साथ सकीना का नाम। जनाब सकीना ने दूर से देखा कि चचा के चेहरे पे जलाल है और तलवार पर साइकिल हो रही है, दौड़ी हुए हैं, बाबा बाबा चचा को जलाल आ गया है, गुस्सा आ गया है। इमाम हुसैन ने देखा, हाँ बिल्कुल हूबहू अली का जलाल है, अब इस जलाल को रोकना है, यहाँ जमाल की ज़रूरत है, यहाँ जलाल का मसला नहीं है। अगर अली के जलाल को रोकना हो तो सानिया जहरा की ज़रूरत है। जनाब ज़ैनब के पास आए, बहन ज़ैनब जाओ अब्बास को जाके रोक दो। हमने भी जवानी में मातम किया, मातमदार जब मातम करते हैं और जब जोश में होते हैं कोई हाथ लगाता है तो हटो, अब उस वक्त कुछ नहीं है कि बस मातम ही करना है। अब्बास किस मुकाम को कहते हैं ज़रा गौर से सुनिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। विलायत के अहकामात पर अमल करना ही वफादारी है। बहुत अच्छी तरह से तारीख़ कहती है कि जनाब ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता माँ की मतानत से काम लेते हुए कदम बढ़ाते हुए करीब पहुँचते हैं, आवाज़ दे रहे हैं अब्बास, मगर अब्बास इधर डूबे हुए नुसरत इमाम हुसैन में कोई और ख्याल नहीं है, बस तलवार पे साइकिल है। अब्बास अली करते हैं तलवार पे साइकिल, सहमी हुई है रात सहर कांप रही है। अजीब और गरीब हालत है। ऐसे मौके पर करीब पहुंचने के बाद जनाब ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, अब्बास जवाब नहीं आया, अब्बास जवाब नहीं आया। तीसरी मरतबा ना जाने किसका नाम ले लिया, जनाब ज़ैनब के तरफ देखा, फौरन खड़े हो गए, शहजादी आप क्यों आई, आपने क्यों जहमत फरमाई। जनाब ज़ैनब ने कहा, मसला कुछ ऐसा था कि मुझे आना पड़ा। शहजादी आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, आप मुझे हुक्म देते मैं खुद आता चला जाता। ए अब्बास, मैं कुछ ऐसी ख्वाहिश करने जा रही हूँ ताकि मुमकिन है कि तुम्हारे लिए आसान ना हो, क्या ये तुम कबूल करोगे? शहजादी अगर आप हुक्म दें तो कायनात मेरे इख्तदार में हो, मेरे इख्तियार में हो, तो आपके कदमों पर ला करके रख देने को तैयार हूँ, आप बता दीजिए क्या हुक्म है आपका। शहजादी ने कहा, अब्बास तलवार को नाम में रख लो। समझ गए अब्बास, ये हुक्म ज़ैनब का नहीं है, ये हुक्म उधर से हुआ है। इन तलवार को नाम में रखते हुए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुबह आशूर दिन, रोज क़यामत का दिन आया, एक के बाद एक के बाद हर मतलब अब्बास कहते हैं मुझे जाना है। जब पूरा लश्कर ख़त्म हो गया, या आखा اے آقا اب میرا خط اب میرا مسئلہ نہیں, اب میں نہیں رہ سکتا, مجھے اجازت دیجیے. مولا امام حسین نے کہا تم علمدار لشکر ہو, لشکر کے علمدار ہو. حضرت عباس نے سر کو جھکایا, مولا جب لشکر ہی نہیں رہا تو پھر میں کہاں کی علمداری کا. یہ پوری انرجی کو موڑنا تھا کہ عباس تم جانتے ہو کہ تین دن سے بھوکے پیاسے بچے ہیں, جاؤ اگر ہو سکے تو پانی کی سبیل کرو. تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے پانی کا نام لیتے ہی کہا مولا یہ حکم سر و آنکھوں پر, میں ابھی جاتا ہوں. داخل ہوئے خیام میں, سکینہ اس مشکیزے کو لا دو, سکینہ کو پکارا تھا, پوری بیبیاں جمع ہو گئیں. جانتے تھے کہ صبح جو جاتا ہے صبح سے وہ کوئی آتا نہیں ہے. زینب قریب آئی, کبھی عباس کو دیکھا کبھی بازوؤں کو دیکھا, کبھی عباس کو دیکھا کبھی بازوؤں کو دیکھا. پوچھا عباس نے شہزادی کیا کر رہی ہیں, کہا عباس ماں نے کہا تھا بابا نے کہا تھا تمہارے بازوؤں میں رسی آئے گی, میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسی کیسے ممکن ہے آ سکے. اب تم تیار ہو جانے کے لیے, مجھے یقین ہے کہ میرے بازوؤں میں رسی آئے گی. عباس جاؤ سکینہ سے مشق لے کر عباس باہر نکلے, فریبرے پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب. امام حسین نے نیچے انگلی سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس میدان کی طرف گئے, بس چند جملے اور ختم دعا. سکینہ نے بچوں کو بلایا, ہر ایک کے ہاتھ میں کوزے ہیں, علم کو بتاتی جا رہی ہے دیکھو چچا جا رہا ہے, دیکھو چچا جا رہے ہیں, ابھی آیا چاہتے ہیں, ابھی پانی آیا چاہتا ہے. ایک مرتبہ علم جھکا, سکینہ نے کہا میرا چچا فرات پر قبضہ کر چکا ہے, گھبرانا نہیں ابھی پانی آنے والا ہے. جملہ کہا بچوں اگر پانی آ جائے نا میں پہلے نہیں پیوں گی, پہلے تم کو پلاؤں گی بعد میں پیوں گی. ایک مرتبہ علم آنے لگا, علم جھکا, سکینہ بے چین ہوئی, کبھی داہنے جانب کبھی بائیں جانب. کچھ دیر بعد علم بلند ہوا, کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا چچا سالم ہے, اب علم آیا ہی چاہتا ہے, دیکھو قریب ہے. دوسری مرتبہ علم جھکا, سکینہ میمنہ دیکھتی رہی میسرا دیکھتی رہی, اب علم اٹھتا ہی نہیں ہے. اولاد والو ذرا سینے کو سنبھالو, بچی نے کوزے کو بھیگا ہاتھوں کو اٹھایا, خدایا مجھے پانی نہیں چاہیے میرے چچا کو بھیج دے. اجرکم علی اللہ, یہ دین ہی ایسا ہے یا آزاداری جس کو کہتے ہیں. دل چاہتا مولانا دو چار جملے اور زیادہ بولیے, کوئی اور دل نہیں چاہتا. ہم چاہتے پرسا دیں بی بی کو, ہم چاہتے پرسا دیں, ہم چاہتے آنکھوں سے آنسو نکلے. ایک جملہ سن لیجئے, آپ زیارت میں پڑھتے ہیں بے ابی انتم و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کون ہے عباس؟ کم از کم روزے عاشور امام حسین نے یہ تین مرتبہ کہا عباس میں تجھ پہ قربان, عباس میں تجھ پہ قربان, عباس میں تجھ پہ قربان. جب عباس نے آواز دی حسین پہنچے, خدا کسی بھائی کو بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے. عباس کہہ رہے تھے موت اتنی مہلت دے دے میں میرے مولا سے ملاقات کر سکوں. عباس میں آ گیا, آنکھیں کھولو مولا, ایک آنکھ میں خون ہے ایک آنکھ میں تیر ہے, دونوں ہاتھوں سے معذور ہو چکا ہوں. میں نے ماں سے سنا تھا جب پیدا ہوا تھا اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک کہ آپ کی گود میں نہیں آیا, جاتے جاتے بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کرتے ہوئے چلے جاؤں. مولا نے عباس کی آنکھ سے خون پہنچا, آنکھ کھلی اس سانس اکھڑنے لگی. حسین نے کہا رک جاؤ رک جاؤ, جب تک جیتے رہے ہمیشہ آقا آقا کہا, ایک بار بھائی کہہ دو. عباس نے یا آقا کہا, خیام میں کوہرام بپا ہوا, وہ عباس. मातम हुसैन
अब्बास शहादत से पहले।